ये आकाशवाणी है। अब आप मुदिता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में अब कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां आतंकवादी चैन की सांस ले सकें। उन्होंने कहा कि भारत के पास आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर खत्म करने की क्षमता है। श्री मोदी ने ये बात पंजाब के आदमपुर वायुसेना स्टेशन पर वायुसेना के जवानों को संबोधित करते हुए कही।
9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए हैं, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई है। आतंक के आंकड़ों को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की जीत है।
ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है, ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है।
प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के साहस, वीरता और कार्यकुशलता की सराहना की।
आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बौखलाए दुश्मन ने आदमपुर एयरबेस पर हमला करने का प्रयास किया, भारतीय सशस्त्र बलों ने दुश्मन के हर हमले को नाकाम किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जुड़े किसी भी मुद्दे पर भारत का राष्ट्रीय रुख लंबे समय से कायम है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले पर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है।
हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है।
एक अन्य सवाल के जवाब में श्री जायसवाल ने कहा कि उभरते सैन्य हालात पर भारत और अमेरिका के नेताओं के बीच कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने बताया कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से लेकर 10 मई को गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने पर सहमति बनने तक दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत हुई, लेकिन इनमें से किसी भी चर्चा में व्यापार का मुद्दा नहीं उठा। सिंधु जल संधि पर पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह संधि इसकी प्रस्तावना के अनुरूप सद्भावना और मित्रता की भावना से संपन्न हुई थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पिछले कई दशकों से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देकर इन सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है। श्री रणधीर जायसवाल ने कहा कि अब सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के निर्णय के अनुसार भारत इस संधि को तब तक स्थगित रखेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग नहीं देता। रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा ने 70 देशों को ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने नए युग के युद्ध में सैन्य श्रेष्ठता के माध्यम से प्रदर्शित की गई देश की शक्ति और राष्ट्रीय संकल्प पर प्रकाश डाला। लेफ्टिनेंट जनरल राणा ने पुष्टि किए गए आतंकी लक्ष्यों के चयन के लिए विस्तृत योजना प्रक्रिया के बारे में उन्हें विस्तार से बताया। देश का रक्षा बजट 2013-14 में 2 लाख 53,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 6,81,000 करोड़ रुपए हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया है कि रणनीतिक सुधारों, निजी क्षेत्र की भागीदारी और नवाचार ने स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा दिया है। इससे भारत एक आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर विश्वसनीय रक्षा निर्यातक बन गया है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को भी मजबूती मिली है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पुडुचेरी में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पिछले साल जुलाई में लागू हुए थे। बैठक में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज पूर्वोत्तर राज्यों को देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया। नई दिल्ली में गारो, खासी और जैंतिया हिल्स क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले मेघालय के स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से बातचीत में श्री धनखड़ ने कहा कि मेघालय के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 13% की वृद्धि हुई है। उन्होंने लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत हुई प्रगति के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन, खनन, आईटी, सेवा क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में अपार प्रतिभा और अपार संभावनाएं हैं। पंजाब में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। अमृतसर के मजीठा विधानसभा क्षेत्र के 4 गांवों के लोगों ने कल रात इथेनॉल से बनी नकली शराब पी ली थी। मृतकों के परिजनों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच 2 आबकारी अधिकारियों, 1 पुलिस उपाधीक्षक और 1 थाना प्रमुख को निलंबित कर दिया गया है। अब तक सरगना समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 10,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि और परिवार के 1 सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। उधर विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने हादसे पर मुख्यमंत्री की आलोचना की है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में विरोधी सशस्त्र गुटों के बीच हिंसक झड़पें होने की खबर है। ये झड़पें प्रेसिडेंसी काउंसिल से संबंधित सहायता विभाग के प्रमुख अब्दुल गनी अल किकली की मौत की खबर आने के बाद शुरू हुई हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार अल किकली की हत्या त्रिपोली में सैन्य क्षेत्र के अंदर 444 ब्रिगेड के मुख्यालय में की गई। 78वां कान फिल्म महोत्सव आज रात फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में शुरू हो रहा है। 12 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में दुनिया भर के फिल्म निर्माता, अभिनेता और सिनेमा प्रेमी अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा की उपलब्धियों का प्रदर्शन करने के लिए साथ आएंगे। इस दौरान सभी श्रेणियों की फिल्मों, जिसमें वृत्तचित्र भी शामिल हैं, का प्रीमियर किया जाएगा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और गोल्डन पाम सहित कई अन्य श्रेणियों में भी विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इस बीच भारत भी इस बार कान फिल्म महोत्सव में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करने की तैयारी में है। महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की 1970 की क्लासिक फिल्म अरण्येर दिन रात्रि फिल्मोत्सव की क्लासिक फिल्मों की श्रेणी में प्रदर्शित की जाएगी। देश में खुदरा मुद्रास्फीति की दर जुलाई 2019 के बाद से अब तक के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। आज सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति की दर 3.16% रही, जो मार्च में 3.34% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में 2.92% और शहरी क्षेत्रों में 3.36% की मुद्रास्फीति दर्ज की गई। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज लगभग 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स आज 1,282 अंक यानी 1.55% गिरकर 81,148 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 346 अंक यानी 1.39% गिरकर 24,578 पर बंद हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में महाराष्ट्र लगातार दूसरे राज्यों से बढ़त बनाए हुए है। पदक तालिका में महाराष्ट्र 36 स्वर्ण, 31 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 95 पदकों के साथ शीर्ष पर है। वहीं राजस्थान 19 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य पदकों के साथ 39 पदक लेकर दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।